Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतहिस्टिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्रीमद भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जाय, समवेत भक्त वृंद की जाय, समवेत भक्त वृंद की जाय, श्री श्री गुरु गौरांग की जाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 13 और 14। आपको अब तक ये दोनों श्लोक तो पूरी तरह से कंठस्थ हो चुके होंगे, फिर भी चर्चा चल रही है अनेक रविवारों से, क्योंकि ये सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने ऐसे अनेक गुणों का उल्लेख किया है जिनका किसी व्यक्ति में होने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। एक सच्चे भक्त के गुण क्या होने चाहिए, सच्चे भक्त का मतलब क्या है, और हमारे सामने क्या आदर्श रहने चाहिए, इन सब चीजों को हम इन श्लोकों के द्वारा जान सकते हैं। तो आइए इन दो श्लोकों का उच्चारण हम पुनः करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरहंकारः, सम दुख सुख क्षमी, संतुष्टः सततम् योगी, यतात्मा दृढ़निश्चया, मय्यर्पितमनो बुद्धि, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरहंकारः, समसुख समदुख सुख क्षमी, संतुष्टः सततम् योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धि, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। बोलिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरहंकारः, समदुःख सुख क्षमी, संतुष्टः सततम् योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मत भक्त समे प्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः दुःख सुख क्षमी संतुष्टो सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धि मद्भक्त समे प्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है जो सुख दुख में समभाव रहता है सहिष्णु है सदैव आत्मतुष्ट रहता है आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांग सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो 12वें अध्याय के इन दो श्लोकों की चर्चा करते हुए अलग अलग से जितने भी गुणों का उल्लेख यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने किया है उनकी हम चर्चा करते आए हैं अनेक रविवारों से अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा निर्ममः निरअहंकारः सम दुख सुखी सुख क्षमी। और पिछली बार जब इस श्लोक के ऊपर चर्चा हुआ था, संतुष्टः सततम योगी, इसके बारे में चर्चा हुई थी। और ये कहा गया था कि भक्त को चाहिए कि वो हर अवस्था में संतुष्ट रहने का प्रयास करे। दुनिया के नियम के अनुसार उतार चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे, सुख दुख आएंगे और जाएंगे, कभी मुनाफा होगा कभी हानि होगी, कभी सफलता होगा और कभी असफलता प्राप्त होगी। तो इन द्वंद्वों के बीच में हम सबको समभाव रहना चाहिए, ऐसा भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। जो भी हमें मिला है उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए और उससे संतुष्ट होना चाहिए। जिससे हमसे जिसके पास अधिक संपत्ति आदि है उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को भगवान की कृपा से उतना मिला है और भगवान की कृपा से मुझे भी इतना मिला है। दूसरी बात कि यदि हमसे कुछ छीन लिया जाए इसे भी भगवान की कृपा समझ लेना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, हर अवस्था में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि इस दुनिया के दृष्टिकोण से हमें घटनाओं को नहीं देखना चाहिए, सफलता क्या है असफलता क्या है, शुभ क्या है अशुभ क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब हमारा दृष्टिकोण भौतिक रहेगा तो हम गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और सदैव विचलित रहेंगे, किसी भी अवस्था में संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। परंतु जब हम हर चीज को इस दृष्टि से देखते हैं कि ये भगवान की कृपा है और ये चीज हमें भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे ले जा पाएगा, तब हमारी दृष्टि सही होगी। आगे चल के यहां भगवान बताते हैं, यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद् भक्तः समे प्रियः। तो अगला गुण जिसका उल्लेख श्री कृष्ण इन श्लोकों में कर रहे हैं और जिसकी चर्चा आज हम संक्षिप्त रूप में करेंगे, वो है यतात्मा। यतात्मा का मतलब है जो आत्मसंयमी है। दूसरे शब्दों में, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो यतात्मा कहलाता है। ये बहुत दुर्लभ चीज है क्योंकि अधिकांश लोग इंद्रियों को वश में नहीं करते हैं, नहीं इंद्रियों को वश में करने कोई योग्य वस्तु समझते हैं। वो इंद्रियों को वश में करना चाहिए ये विचार भी उनके मन में नहीं आता है, बस इंद्रियों के प्रवाह में बह जाते हैं। वैसे इंद्रियों का स्वभाव है बद्ध जीव के लिए कि वो विषयों का संपर्क करना चाहते हैं, जैसे कि आंख रूप को देखना चाहते हैं, कान ध्वनि सुनना चाहते हैं, नाक सुगंध सूंघना चाहता है, जीभ स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहता है या तो कुछ बोलना चाहता है। इस प्रकार से बद्ध जीव का स्वभाव ये होता है कि वो उसकी इंद्रियों का संपर्क इंद्रियों के विषयों से करना चाहता है। और बद्ध अवस्था में ये तो स्वाभाविक रूप से चलता है, तो अज्ञानी व्यक्ति उनको रोकने का भी या नियंत्रित करने का या संयमित करने का विचार भी नहीं करता है, बस बहे जाता है, बहे जाता है। जहां इंद्रियां उसे ले जाती हैं वहां वो चले जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति इंद्रियों का दास होता है, गोदास, गो मतलब इंद्रियां। तो इंद्रियों को वश में नहीं करने से व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जितने भी योग आदि मार्ग हैं या आध्यात्म मार्ग हैं, उन सब में सर्वप्रथम इसी बात को कहा जाता है कि हमें इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करने के बजाय कोई योग मार्ग संभव नहीं है, कोई आध्यात्मिक पथ संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही कह दिया है अनेक अध्यायों में भी, और इस अध्याय में भी वो कहते हैं, जैसे कि पहले उन्होंने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो कह चुके हैं कि हे अर्जुन, योग में स्थित हो जाओ और कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, कुरु कर्माणि मतलब कर्म करना। कैसे कर्म करना? योगस्थ, योग में स्थित होकर कर्म करना। लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि केवल कर्म करना यही भगवत गीता का सार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण केवल इतना कहने के लिए प्रकट नहीं हुए कि कर्म करते रहो। भगवान श्री कृष्ण इस चीज को बताने आए हैं कि हमें किस भावना में कर्म करने चाहिए। योगस्थ, योग में स्थित होकर कर्म करो हे अर्जुन। लेकिन योग में स्थित होने का क्या मतलब है? कि हमें पद्मासन में बैठना चाहिए या शीर्षासन में खड़े हो गए कर्म कर लिया? नहीं। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, योग में स्थित होने का सबसे पहला लक्षण यह है कि हमें भौतिक आसक्ति को त्यागना चाहिए। सिद्धि असिद्धि समोभूतवा, सिद्धि को और असिद्धि को, सफलता को असफलता को, दुख को सुख को हमें समान समझना चाहिए। समोभूतवा, समभाव रहना चाहिए हमारा इन दोनों अवस्थाओं में। समत्वम योग उच्यते, तो ऐसे समत्व की भावना को योग कहते हैं। तो योग केवल कोई आसन या प्राणायाम करने की बात नहीं है, योग जो है वास्तव में एक चेतना की अवस्था है जिसमें हम इस दुनिया से निरासक्त होकर, इन द्वंद्वों से परे होकर, हमारे चित्त को परब्रह्म श्री कृष्ण में हम आश्रित करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे एक योग में स्थित होने व्यक्ति का वर्णन करते हैं तो अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, हम कैसे जान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है, इसके लक्षण क्या होते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीर किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपने ऐसे योगियों का वर्णन तो कर दिया है और आपने कहा है कि उनका चित्त जो है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, स्थित अधी, उनकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, समाधि स्थस्य, समाधि में स्थित होने चाहिए, वो स्थित प्रज्ञ होने चाहिए, अर्थात उनकी प्रज्ञा या चेतना बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है? जब यहां अर्जुन का भाषा कहते हैं, इसका मतलब है कि उनके लक्षण क्या है, कैसे पहचान सकते हैं हम उनको, क्या गुण होते हैं उनके अंदर। फिर वो कहते हैं किम प्रभाषेत, उनकी बोलचाल कैसे होती है। तो यहां अर्जुन के कहने का तात्पर्य ये है कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विचार और वचनों के ऊपर अन्यों के क्रोध या उदासीनता का क्या असर पड़ता है। समझ लीजिए कोई हमारे ऊपर क्रोधित हो गया तो हमारा बर्ताव कैसे रहेगा, किसी ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हमारा कैसे बर्ताव रहेगा, हमने जब किसी के प्रति सम्मान की अपेक्षा की वो सम्मान नहीं मिला तो हमारा बर्ताव कैसे रहेगा। तो अन्यों के क्रोध से, उनकी उदासीनता से आदि, उनके व्यवहार से, उनके बोलने से हमारे चित्त के ऊपर कैसा परिणाम पड़ता है और उसके फलस्वरूप हम किस प्रकार से बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो है वो कैसे व्यवहार करता है, उसका प्रतिकार कैसे होता है। जब कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है या उसके खिलाफ गलत काम करता है तो क्या तुरंत वो झगड़ा करने बैठ जाता है, गाली गलौज करता है, क्या करता है? तो ये अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ का व्यवहार कैसे रहता है। तीसरी बात, किम आसीत, कैसे वो बैठता है। अर्जुन का तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि क्या वो सिद्धासन में बैठता है या पद्मासन में बैठता है, केवल ये प्रश्न नहीं है अर्जुन का, तात्पर्य ये है कि ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को प्रयोग करने से कैसे रोक देते हैं। इंद्रियों का तो बद्ध अवस्था में स्वभाव है कुछ ना कुछ कार्य करते रहना, विषयों के संपर्क में रहना, और विषयों से आकर्षित होकर इंद्रियां उन विषयों के माध्यम से तुष्टि चाहती हैं। तो कभी कभी आदमी को अपनी इंद्रियों को भी रोक लेना पड़ता है ना। जैसे समझिए कि हम सब बैठे हैं, अचानक किसी को बहुत ज्यादा भूख लगी, कम से कम भक्त सोचेगा अरे कैसे लगे, अच्छा नहीं लगेगा कि प्रवचन के बीच में से बीच में उठ के जाऊं केवल भोजन लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, तो आदमी अपने आप को रोक लेता है। हालांकि उसके अंदर भूख बहुत लगी है फिर भी वो संभाल लेता है अपने आप को। उसी प्रकार से कभी कभी एक व्यापारी होता है, वो किसी ग्राहक के पास जाता है, ग्राहक कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है, व्यापारी के मन में गुस्सा तो बहुत आ जाता है कि दो बातें सुना दूं, परंतु फिर अपने आप को संभाल लेता है कि नहीं, इस आदमी से बहुत हमें धंधा मिलना है, इसलिए आज चुप रह जाता है। तो व्यावहारिक जगत में भी आदमी को अपने इंद्रियों को संभाल के रखना पड़ता है, इसके बिना काम नहीं चलता। किसी कुटुंब में, परिवार में भी कितना कुछ आत्मसंयमी होना पड़ता है ना। पांच लोग, छह लोग हैं, हर एक का स्वभाव अलग अलग है, हर एक के कार्य बोलचाल सब अलग अलग हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, रोक लेना पड़ता है, कभी बच्चे करते हैं माता पिता को कठिनाई होती है, कभी माता पिता कुछ करते हैं बच्चों को कठिनाई होती है, सब सहन करना पड़ता है। तो इंद्रियां कुछ कहती हैं परंतु आत्म बुद्धि से अपने आप को रोक लेता है, इंद्रियों का प्रयोग नहीं करता है उस समय। तो अर्जुन पूछना चाहते हैं कि ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को प्रयोग करने से रोक कैसे देता है, वो जानना चाहते हैं। और चौथा प्रश्न अर्जुन का है, व्रजेत किम, वो कैसे चलता है। इसका तात्पर्य केवल ये नहीं है कि अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति धीरे से चलता है, तेजी से चलता है। नहीं, अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि वो अपने इंद्रियों का प्रयोग कैसे करता है। किम आसीत का मतलब है कि इंद्रियों को रोक के कैसे रखता है, और व्रजेत किम का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों का प्रयोग वो कैसे करता है। तो एक एक करके फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। वो कहते हैं, हे अर्जुन देखो, स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण ये होता है कि वो अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से दूर रखने में सक्षम होता है। जहां विषय पुकारते हैं वो इंद्रियों को पीछे पीछे उनके भागने नहीं देता। मनोगतान, कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जो हैं, ये मन के भ्रम हैं। जिस प्रकार से जब व्यक्ति सपना देख रहा होता है तो सपने के अंदर जो भी उसका सुख दुख का अनुभव होता है वो सच्चा सुख दुख नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हम तो आत्मा हैं, हमने इस भौतिक शरीर को तो धारण कर लिया, परंतु ये भौतिक शरीर हम नहीं हैं। तो भौतिक शरीर के जो तथाकथित सुख दुख हैं, इनको अपना मान के हम एक भ्रम या सपने की दुनिया में रहते हैं। तो ये शरीर से संबंधित जितने भी सुख दुख हैं वो सपने के सुख दुख के समान हैं। ये काल्पनिक हैं, सपने के सुख दुख हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वप्रथम एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसे काल्पनिक सुख दुख से परे हो जाता है, इस संसार के इस शरीर के सुख दुख में रमण नहीं करता। तो फिर किस चीज में रमण करता है, इसका दूसरा लक्षण, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, कि केवल अपने आत्मा में ही संतुष्टि प्राप्त करता है, बाह्य वस्तु में नहीं, आध्यात्मिक वस्तुओं में वो रमण करता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की के लक्षण क्या होते हैं। फिर आगे दूसरा प्रश्न अर्जुन का था कि किम प्रभाषेत, कि वो कैसे बात करता है, अर्थात उसका व्यवहार अलग अलग अवस्थाओं में कैसे रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो कहते हैं कि हे अर्जुन देखो, यदि तुम जानना चाहते हो कि स्थित प्रज्ञ का व्यवहार कैसे रहता है तो सुनो, पहली बात, दुखेषु अनुद्विग्न मनाह, दुख के समय उसका मन विचलित नहीं होता है। उद्विग्न होना अर्थात विचलित होना, अनुद्विग्न का मतलब है विचलित नहीं होना। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाह, कि दुख के समय एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति विचलित नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है, और साथ साथ सुखेषु विगत स्पृहः, और सुख के लिए स्फूरित नहीं होता, सुख प्राप्त करने के लिए। कई बार जब लोगों को बताया जाता है कि भाई देखो, ये संसार दुख का सागर है, यहां केवल दुख ही दुख है, तो कई लोग ऐसे हैं जो तर्क के लिए कहते हैं, नहीं मेरे जीवन में तो कोई दुख नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो उनसे पूछा जा सकता है, फिर आप विचलित क्यों होते हो समय समय पर। दूसरी बात, हाथ धोकर सुख के पीछे क्यों पड़े हो? आजकल हाथ धोए बिना भी लोग सुख के पीछे जाते हैं, स्नान के बिना, हाथ धोए बिना। तो हर एक व्यक्ति सुख के पीछे भागे जा रहा है, क्यों? यदि वास्तव में सब स्थित प्रज्ञ है, यदि यहां दुख नहीं है तो सुख को प्राप्त करने की चेष्टा क्यों करनी चाहिए? वीत राग भय क्रोध साथ साथ में कृष्ण कहते हैं कि राग अर्थात आसक्ति, भय और क्रोध, इन तीन गुणों से, लक्षणों से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मुक्त होता है। स्थित धीर मुनिरुच्यते, तो ऐसे व्यक्ति को स्थित धीर कहते हैं, जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है। जब इंद्रियां वश में नहीं होती हैं तो बुद्धि विचलित रहती है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब तीसरा प्रश्न है किम आसीत, कि अपने इंद्रियों को प्रयोग करने से कैसे रोक देता है एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहरते चालम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो जिस प्रकार से एक कछुआ अपने अंगों को, यथा अपने हाथों को, पैरों को, अपने सर को संकुचित कर देता है, उनको खींच लेता है, उसके खोल के भीतर ला देता है, और जब प्रयोग करने की आवश्यकता होती है हाथ पैर सर की, तो उनको बाहर निकालता है, उसी प्रकार से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है या नहीं करता है? आवश्यकता पड़ने पर इंद्रियों का प्रयोग करता है, और आवश्यकता नहीं होने पर वो इंद्रियों का प्रयोग नहीं करता है। ये कछुए का उदाहरण बहुत अच्छा है। भले आज के प्रवचन में घर जाकर आप कुछ भी याद न रखें, परंतु कछुए को तो जरूर याद रखे जाइए। रात को आप वो कुछ जलाएंगे मच्छर दूर करने के लिए, कछुए का छाप देखेंगे तो याद करिए कि आज हमने भगवत गीता प्रवचन में ऐसे ऐसे सुना था। कछुए का उदाहरण हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कछुआ हमें ये सिखाता है कि कैसे हमें इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए और नहीं चाहिए। कछुए को चलते हुए आपने देखा है ना? आप में से कितने भक्तों ने कछुए को देखा है? कछुए का वर्णन कैसे है? उसका एक खोल होता है ना, जो बहुत कठोर होता है, तो कोई पत्थर गिरे, कोई पशु प्रहार करे, आक्रमण करे, तो अपनी रक्षा के लिए कछुआ अपने अंगों को, अर्थात दो पैरों को, दो हाथों को, अपने सर को, आंखों को, सब उस खोल के नीचे रख लेता है। और वो खोल तो बहुत कठोर होता है, इसलिए कोई पशु आए भी तो उस खोल को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब जरूरत पड़ती है तो हाथ पैर फैला देता है और चलने लगता है, या अपने मुंह को बाहर निकालकर अपना भोजन ले लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये है कि जब इंद्रियों का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी तब इंद्रियों का प्रयोग करो, जब आवश्यकता नहीं होगी तब नहीं करो। तो फिर प्रश्न ये आता है, क्या प्रश्न आता है? आवश्यकता का मतलब क्या है? जब इंद्रियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति सोचेगा अब आवश्यक है, अब आवश्यक है तो मैं इंद्रियों का प्रयोग करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि नहीं, आवश्यकता का मतलब है जब श्री कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है तब, अन्यथा नहीं। ये
यदि भगवान की सेवा के लिए हमें इंद्रियों का प्रयोग करना पड़े तो अवश्य हमें करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए। उस समय नहीं करना ये ठीक नहीं है। दूसरी ओर जब इंद्रियों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम नहीं लगा सकते किसी कारणवश, तो इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे ये इंद्रियां जो हैं बहुत प्रबल हैं, इतने प्रबल हैं ज्यादा कि आदमी को खींच लेती हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, कि ऐसे जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं मन को बुद्धि को हर लेती हैं। एक विपश्चित है, एक बहुत ही बुद्धिमान विवेकी पुरुष के बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। इंद्रियां इतनी प्रबल होती है, इसलिए हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने इंद्रियों से बहुत सावधान रहना चाहिए। और इंद्रियां जैसे चाहती हैं वैसे उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल भगवान की सेवा के लिए इनका प्रयोग होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी जड़ भरत की कथा का वर्णन करते हैं। जड़ भरत उनके पूर्व जन्मों में राजा भरत थे और उसके बाद एक हिरण भी थे, और इस जन्म में उनको एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। वो जन्म से ही आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके थे, आत्म साक्षात्कार प्राय थे, परंतु उनके पिछले दो जन्मों के स्मरण होने के कारण वो इस जन्म में बहुत सावधान थे। उन्होंने सोचा कि ये माया का जगत है, मैं यदि साधारण व्यक्ति की तरह रहा तो मैं माया में पड़ जाऊंगा। इसलिए उन्होंने ऐसे नकल की कि मानो वो एक पागल या मूर्ख व्यक्ति है। उनके पिता ने बहुत प्रयास किया जड़ भरत को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, एक सभ्य आर्य व्यक्ति बनने के लिए, परंतु जड़ भरत ने एक नहीं मानी। इस प्रकार नाटक किया जड़ भरत ने कि सभी लोग सोचने लगे कि ये जड़ भरत तो बिल्कुल जड़ ही है, इसलिए नाम ऐसे आया, जड़ वस्तु की तरह है, मूर्ख है। और जड़ भरत इसी से खुश थे कि अब मुझे कोई हैरान नहीं करेगा, अब मैं आराम से रहूंगा, अंतःकरण में जड़ भरत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे, उनकी चेतना कभी भगवान कृष्ण से हटी नहीं। हालांकि बाहर के लोग उनको मूर्ख समझते थे, परंतु वो सबसे ऊंचे पहुंचे हुए एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। एक दिन हुआ ये कि सिंधु और सौवीर राष्ट्रों के जो राजा थे जिनका नाम था रहुगण, वो किसी दूसरे स्थान में जा रहे थे पालकी के ऊपर सवार होकर, और उनके जो वाहक हैं उनमें से एक कोई बीमार पड़ गया, एक वाहक की कमी हो गई, तो ये वाहक इधर उधर ढूंढ रहे थे कि राजा की पालकी उठाने के लिए कौन योग्य व्यक्ति हो सकता है जो हमारा साथ दे सकता है। और वहां उनको खेत में खड़े हुए जड़ भरत का दर्शन हुआ और जड़ भरत से कहा कि आओ, अब राजा की सेवा के लिए तुम्हें पालकी उठाना पड़ेगा। जड़ भरत तैयार हो गए और पालकी उठा के आगे चलने लगे अन्यों के साथ में। परंतु जड़ भरत ने सोचा कि मैं तो यहां आगे चल रहा हूं, परंतु आगे रास्ते में चींटियां हैं तो उनका क्या होगा, चलते चलते मेरे पैरों के तले चींटियां आ गईं तो बेचारे मर जाएंगे, तो क्या किया जाए। इसलिए जड़ भरत ने 3 कदम आगे देख के धीरे धीरे से चलना शुरू किया। सावधानी से ताकि बीच में कोई चींटियां वगैरह ना आए। तो जब अचानक वो रुक जाते थे या ऐसे इस प्रकार से चलते थे कि जैसे अन्य लोग साथ नहीं दे सकते, तो पालकी ठीक से चली नहीं। उस समय राजा को थोड़ा गुस्सा आया और राजा ने वाहकों से कहा पालकी ठीक से चलाओ। तो वाहकों को डर लग गया, उन्होंने सोचा कि ये राजा है, कुछ भी कर सकता है, दंड भी दे सकता है, और ये जो नया व्यक्ति है ये ठीक से पालकी उठा नहीं रहा है, ठीक से चल नहीं रहा है, इसलिए इसकी वजह से हमें भी दंड मिल सकता है। तो उन्होंने कहा राजा से कि महाराज ये गलती हमारी नहीं है, हम तो हमारे कर्तव्य का पालन पूरी तरह से कर रहे हैं, परंतु ये जो नया व्यक्ति है ये बीच बीच में पालकी को रोक रहा है, तो गलती इसकी है। तो महाराज रघुगण तुरंत समझ गए कि परिस्थिति क्या है। तो जड़ भरत की ओर देखकर महाराज रघुगण कहने लगे, गुस्से में थे तो ऐसे कहने लगे कि अरे लगता है कि तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, है ना, हालांकि जड़ भरत तो बहुत जवान थे, लगता है तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, लगता है कि बहुत थके हुए हो, बहुत लंबी यात्रा करके जिसमें तुम अकेले बहुत भारी वजन उठा रहे थे और तुम्हारे साथ कोई नहीं था, और लगता है कि तुम्हारा शरीर अब बहुत कमजोर हो गया है, और इस प्रकार से राजा बात करने लगे। तो जड़ भरत ने समझ लिया कि किस भाव से राजा बोल रहे हैं। राजा तो अपने आंखों के सामने देख रहे थे कि जड़ भरत बूढ़े नहीं थे, वो जवान थे, वो ये भी देख रहे थे कि वो अकेले पालकी को उठा नहीं रहे थे, तीन लोग और थे, वो ये भी देख रहे थे कि वो थके हुए नहीं थे और दुबले पतले भी नहीं थे, बड़े हृष्ट पुष्ट थे। तो उन्होंने जान लिया कि जानबूझकर महाराज इस प्रकार से अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, परंतु जड़ भरत ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप महाराज के कटु वचनों को सुन लिया और पालकी आगे उठाते चले गए। फिर से जब जड़ भरत ऐसे ही बीच बीच में रुक के चलने लगे तो इस बार महाराज रघुगण को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाकर रघुगण महाराज ने जड़ भरत से कहा कि अरे प्राण शरीर के अंदर होते हुए भी तुम एक मरे हुए व्यक्ति के समान कार्य क्यों कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे सेवक हो, और यदि तुमने ठीक से मेरी सेवा नहीं की तो मैं तुम्हें उस प्रकार से दंड दूंगा जैसे कि यमराज पापी लोगों को देते हैं। और ऐसे भला बुरा बहुत कुछ कहने लगे महाराज रघुगण जड़ भरत से। तो इस समय जड़ भरत ने सोचा कि अब मेरी बारी है बोलने के लिए। आज तक जीवन में जड़ भरत ने दो बातें भी शायद नहीं कही होंगी किसी से, हालांकि वो एक पूरी लंबी आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए वो बिल्कुल योग्य व्यक्ति थे, आत्मज्ञान से भरे हुए थे, वो आत्म साक्षात्कार भी था उनको, बहुत कुछ बोल सकते थे, परंतु आज तक मूर्ख का नकल कर रहे थे इसलिए वो कुछ बोले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि आवश्यकता नहीं है कुछ बोलने के लिए तो मैं क्यों बोलूं, लेकिन आज आवश्यकता पड़ी। क्या आवश्यकता थी वो, उन्होंने देखा कि ये राजा है और राजा को भगवान का प्रतिनिधि होके प्रजा का मार्गदर्शन धार्मिक मार्ग में करना चाहिए, परंतु ये राजा तो अत्यधिक रजोगुण से प्रभावित हो चुका है, अनाप शनाप बक रहा है क्रोध के वश में आके, तो इस राजा को कुछ ज्ञान देना चाहिए। तो प्रचार का अवसर मिला राजा जड़ भरत को, और उन्होंने सोचा कि राजा को प्रचार करना चाहिए। देखिए, राजाओं को प्रचार करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राजा भक्त बन जाएंगे तो प्रजा भी भक्त बन जाएंगी। थोड़े दिन पहले हमने एक बहुत सुंदर कहानी सुनी जो हमारे लिए सुनने योग्य है। आपको पता है कि भारत में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, सबको पता है ना। तो बौद्ध धर्म आने वाले सालों में, सदियों में, बौद्ध धर्म के प्रचारक जो हैं वो अनेक देशों में गए, जैसे चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जगह जगह गए और जापान भी पहुंचे। जब जापान के राजा के सामने ये 3-4 प्रचारक बौद्ध धर्म के पहुंचे, गहरे वस्त्र पहने हुए थे, सरमनवालिया था, और राजा ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, हम बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहां हमारे देश में आपके धर्म की क्या जरूरत है। उन्होंने बताया कि देखिए, आपके राज्य में क्या दशा है, सभी लोग असंतुष्ट हैं, सभी लोग दुखी हैं, और ऐसे अवस्था में हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार करने से लोगों को शांति और सुख की प्राप्ति होगी, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो राजा ने कहा कि हम कैसे निश्चित रूप से जान सकते हैं कि आपके धर्म का को स्वीकार करने से वास्तव में हमारे जीवन परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, आपकी परीक्षा हम लेंगे। और उस राजा ने ऐसे अनेक गुनहगारों को बुलवाया जो जघन्य कार्यों के लिए गिरफ्तार किए गए थे, और उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। कोई खूनी था, कोई डकैत था, कोई क्या था, तरह तरह के ऐसे दुष्ट लोगों को लाके उनके सामने रखा, और इन दुष्ट लोगों को उन 4 मुनियों के साथ में नौके में रख के छोड़ दिया, और उनको एक द्वीप में पहुंचा दिया कि वहां जाके रहो इनके साथ। तो ये लोग तैयार हो गए और वहां पर गए, और ऐसे अनेक महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, 2 साल भी बीत गए होंगे शायद। और अनेक दिनों के बाद राजा के दरबार में अचानक अनेक ऐसे गहरे वस्त्र धारण किए हुए, सरमनवाए हुए लोग आए। तो राजा ने पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि हम वही लोग हैं जो आपके पास आए थे पहले। अरे लेकिन आप इतने सारे तो नहीं थे। हाँ, आपने जो हमारे साथ में इतने लोगों को भेजा ना, तो देखिए ये सब है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, इन लोगों को आपने परिवर्तित कर दिया और इनको आपकी तरह बना दिया। तो उसी समय उस देश के राजा ने, जापान के राजा ने घोषणा की कि मेरा सारा देश बौद्ध धर्म को स्वीकार करेगा। प्रजा के लिए आदेश है कि आपको बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए। देखिए, वैदिक सभ्यता में भी ऐसे ही बात थी कि राजा के वचन जो हैं वो भगवान के वचनों के समान हुआ करते थे, क्योंकि राजा जो है वो नारदेव कहलाते थे, नर रूप में भगवान के प्रतिनिधि। नेपाल राज्य में भी कई वर्ष पूर्व तक ऐसी अवस्था थी कि राजा जो भी कहते थे वो प्रजा उसको मान लेती थी। वैदिक सभ्यता में ऐसे हुआ करता था। तो जापान देश में भी ये इस प्रकार की संस्कृति बनी रही, और 2500 वर्षों से वहां के जो परंपरा है राजाओं की, वहां के जो वंश है वो चलते आए हैं। तो उस समय जब जापान के राजा ने कहा कि मेरा सारा देश बौद्ध धर्म को स्वीकार करेगा, तो एक घोषणा से सारे देश का परिवर्तन हो गया। बौद्ध देश बन गया जापान उस समय। तो देखिए, राजा एक ऐसे बन जाए तो सारे देश का परिवर्तन हो सकता है। राजा अशोक बने बौद्ध, सारे प्रजा को बौद्ध बना दिया। राजा परीक्षित बने वैष्णव, सारे धर्म में वैष्णव धर्म को फैला, सारे राज्य में वैष्णव धर्म को फैला दिया। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि सभी लोग कृष्ण भक्त बने, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नेता है वो वैष्णव धर्म को या कृष्ण भक्ति के पथ को स्वीकार करें। यदि वो स्वीकार करेंगे तो फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए कितना सुलभ हो जाएगा, कितना लाभ हो जाएगा। तो इसलिए जड़ भरत महाराज ने देखा ये अवसर है प्रचार करने के लिए, इसलिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। नहीं तो इसके पहले जड़ भरत महाराज को कोई अवसर नहीं मिला था बोलने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, तो वो चुप रहे थे। परंतु अब जब मौका मिला तो बोलना शुरू कर दिया, और ऐसा एक सुंदर प्रवचन उन्होंने राजा को दिया कि राजा चकाचौंध रह गया। राजा ने सोचा, अरे मैं तो इस व्यक्ति को मूर्ख मान रहा था, मैंने तो इतना गाली गलौज किया इसके लिए, इतना कुछ भला बुरा कह दिया इसको, लेकिन ये तो बड़े संत है, ये तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली, और अपने पालकी से उतर के साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया जड़ भरत के सामने कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका, आप इतने आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं लेकिन मैंने आपको गलत समझा। देखिए, चाहे कोई व्यक्ति मूर्ख हो या न हो, चुप रहना ही अच्छा होता है। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है, यदि वो चुप रहता है तो कोई जान नहीं पाएगा कि वो मूर्ख है या नहीं, लेकिन जब मूर्ख व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है सभी लोग जानते हैं ये मूर्ख आदमी है ना। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो वैसे भी चुप रहता है, क्योंकि जानता है कि भगवान की सेवा के लिए बोलने के लिए समय मिले, अवसर मिले तो बोलेंगे, भगवान की सेवा करने के लिए बोलने की का अवसर नहीं है तो चुप रहेंगे। बोलने का वेग इतना प्रबल होता है कि अधिकांश लोग बड़बड़िया हो जाते हैं, बड़बड़ 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 दिन भर करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने जिह्वा को वेश वश में नहीं कर सकते हैं, बोले जाते हैं। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बोलने की प्रवृत्ति अनियंत्रित होने के कारण व्यक्ति वैर की भावना अन्यों में उत्पन्न कराता है, दूसरे व्यक्ति उसके शत्रु बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनियंत्रित जीव के कारण व्यक्ति कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहता है, दूसरों की निंदा करता है, और जब जिसकी निंदा की वो व्यक्ति इस बात को सुन लेता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसके मन में शत्रुता की भावना उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार से व्यक्तियों के बीच में संबंध बिगड़ जाते हैं। तरह तरह के दुख ये केवल इसलिए उत्पन्न होते हैं कि हम हमारे बोलने की प्रवृत्ति को वश में नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, जब उनको हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे दुख के कारण हो जाते हैं, इनसे शत्रुता उत्पन्न हो जाती है अन्यों के प्रति, और हमारा जीवन ही नारकीय हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को वश में करना ये हमारे इस जगत के कल्याण और सुख के लिए भी है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि इंद्रियों को तृप्त को नियंत्रित करने से हमें परलोक में भगवान की प्राप्ति होगी आने वाले जन्म में, तो हम तो इस जन्म की बात करना चाहते हैं, तो इनका इसका उत्तर ये है कि इस जन्म के लिए भी यदि आपको सुख और शांति चाहिए तो इंद्रियों को आपको नियंत्रित करना चाहिए। इसके बिना आपके जीवन में केवल दुख और दुश्मनी और तरह तरह के कष्ट आएंगे। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इंद्रियों को, जैसे बोलने का वेग है या खाने का वेग है, जिह्वा का वेग, ये तरह तरह के जो वेग हैं, इनको हमें नियंत्रित करना चाहिए और इनका इस्तेमाल केवल भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों का इस्तेमाल आवश्यकता पड़ने पर करता है, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारी इंद्रियां ये विषैले सर्पों के समान हैं। एक विषैला सर्प जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो किसी को मार भी डाल सकता है। तो उसी प्रकार से हमारी अनियंत्रित इंद्रियां विषैले सर्पों के समान होने के कारण वो हमें मृत्यु की ओर ले जाती हैं। परंतु जब हम इन्हीं इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो वही इंद्रियां हमारे आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के कारण बन जाते हैं, सुख और शांति के कारण बन जाते हैं। जैसे कि यदि एक विषैले सांप के दांतों को ही निकाला जाए या जो जिसमें विष भरे हुए होते हैं, तो वो विषैला सर्प जो है वो डस नहीं पाएगा और कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। सपेरा जानते हैं ना, जो व्यक्ति सांप को वश में करता है वाद्य आदि बजाकर, जिस प्रकार से वो सांप को वश में कर लेता है, उसी प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन विषैले सर्पों के समान इंद्रियों को कृष्ण भक्ति के द्वारा वश में करे। इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने से स्वाभाविक ही वो इंद्रियां वश में आ जाती हैं। दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये इंद्रियां जो हैं, ये काल सर्प पटली, ये बहुत सारे विषैले सर्पों के समान हैं। दुर्दांत इंद्रिया, ये इंद्रियां इतने ही प्रबल हैं, दुर्दांत ऐसे बहुत विषैले सर्पों के समान हैं। परंतु जब इन इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, प्रोत्खात दंष्टायते, तो वो ऐसे सांप हैं मानो कि जिनके दंष्ट ही निकाले गए हों, तब उनसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, साधन भक्ति के जितने भी अंग हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे इंद्रियां वश में आ जाएंगी, हम भी यतात्मा हो पाएंगे। कोई व्यक्ति कहेगा हमारी इंद्रियों को वश में करना नामुमकिन है, नहीं। यदि आपने पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताए हुए पथ पे आप चलेंगे, जो विधि निषेध हैं उनका पालन करेंगे, तो अवश्य ही कृष्ण की कृपा से आपकी इंद्रियां भी नियंत्रित हो सकती हैं। तो किसी को निराश होकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि मैं तो कभी भी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाऊंगा, ऐसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की शरण में जाने से सब कुछ संभव है। परंतु हमारी ओर से हमें इन विधि निषेधों का पालन बड़े अच्छे ढंग से करना चाहिए, तब सब कुछ संभव हो पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये है यतात्मा बनने का मार्ग। और जब ऐसे कृष्ण की सेवा करते करते इंद्रियों का प्रयोग हम केवल कृष्ण की सेवा के लिए करेंगे, भोग के लिए नहीं करेंगे, तब कृष्ण हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हम जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी के कोई प्रश्न है क्या? हाँ, माइक है क्या? प्रश्न ये है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब विदुर जी वापस हस्तिनापुर लौट के आए तो उन्होंने धृतराष्ट्र को भक्ति का उपदेश न देकर ध्यान योग का उपदेश क्यों किया? वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत में तरह तरह के पथों का वर्णन है और ये तो द्वापर युग का समय था, कलयुग की शुरुआत हुई नहीं थी। हालांकि द्वापर युग में ऐश्वर्यशाली अर्चा विग्रह की सेवा की विधि या मार्ग बताया गया था, फिर भी ये विधि तो अवश्य थी कि पंचाशोर्धम वनम व्रजेत, कि 50 साल की आयु में हमें वन में प्रस्थान करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। तो जब वन में जाएंगे तब कहां ऐश्वर्यशाली आराधना कर पाएंगे भगवान की श्री मूर्ति का। और विदुर जी को जो भी उपदेश दिए, क्षमा कीजिए, धृतराष्ट्र को विदुर जी ने जो भी उपदेश दिए, ऐसा नहीं है कि वो भक्ति के उपदेश नहीं थे, परंतु विदुर जी ने इस प्रकार से उपदेश दिया जिससे कि राजा धृतराष्ट्र को ये बात समझ में आए। और राजा धृतराष्ट्र वहां जाकर ऐसी चीजें कर पाए। तो ऐसे योग पद्धति के बारे में ज्ञान देकर धृतराष्ट्र के साथ वो वन में गए और धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों वहां गई, गांधारी देवी भी उनके साथ में आए और दोनों ने अपना जीवन अंततः सफल कर दिया। और कोई प्रश्न?
आपने बोला कि माइक नहीं चल रहा है क्या?
शांत रहना चाहिए, हम कोशिश शांत रहना चाहिए, हम कोशिश भी करते हैं लेकिन ऐसी समस्या कभी कभी हो जाती है तो दो भक्त आते हैं और राह मांगते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं तो कभी कभी पति पत्नी का समस्या होती है, झगड़ा होता है तो हमारे पास आते हैं तो हमारा मुंह खोलना ही पड़ता है। तो खोलने के बाद एक तो दुश्मनी हो जाती है, इसको अच्छा बोला तो उसको ऐसा होता है। तो इसी वक्त क्या करना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए?
मुंह खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान ने ये नहीं कहा है कि केवल जब मीठा बोलना है तभी मुंह खोलना, भगवान ने ऐसे कहा है? भगवान ने कहा है जब मेरी सेवा के लिए आवश्यकता पड़े तब मुंह खोलना, चाहे वो सुनने वाले के लिए मीठा लगे या ना लगे। सत्य कहना जरूरी है परंतु सर्वश्रेष्ठ बात तो ये है कि सत्य मीठे ढंग से कहा जाए, ताकि पचन भी हो सके सुनने वाले को। कड़वे ढंग से कहेंगे तो अपचन हो जाएगा, फिर समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए अवश्य उसी बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है और जो भी समस्या है इनका निवारण किया जा सकता है। हाँ, तो हमें सत्य बोलना चाहिए, देश काल पात्र के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, और जो सही है सही, गलत है जो गलत। ठीक है, हाँ जी, माइक।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। इन दोनों श्लोक में बहुत से गुणों का वर्णन किया गया है, अद्वेष्टा, मैत्र, करुण, निर्मोह, निरंकार। लास्ट में भगवान बोलते हैं यो मत भक्त स मैं प्रिय। मत भक्त मतलब इतने गुण होने के बाद में भी केवल कृष्ण के ही भक्त होना चाहिए?
फिर से बोलिए अंत में।
यो मत भक्त स मैं प्रिय, केवल इतने गुण होने के बाद में भी कृष्ण के ही भक्त होना जरूरी है? कारण की मत भक्त बोलते ना भक्त, मतलब केवल ये सब गुण होने के बाद में भी कृष्ण भक्ति ही होना चाहिए भगवान जो?
केवल ये सब गुण होने से ही भक्त होना चाहिए, ये प्रश्न है?
ये गुण होने से भक्त अधिकतर है कि उसके बाद में भी कृष्ण भक्ति ही होना चाहिए, ये बोलते हैं मत भक्त सब मैं प्रिय।
हाँ, तो ये सारे गुण होने काफी हैं कि भक्त भी बनना चाहिए?
मेरे ही भक्त बनना चाहिए।
उत्तर ये है कि भक्त बने बिना ये सब गुण आ नहीं सकते है ना? कहाँ मिलते, कहाँ दिखाई पड़ते हैं ये सारे गुण? देखिए, जब भक्त बनेंगे तब ही ये गुण प्रकट होंगे, तो फिर भगवान को कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये मूल गुण है, मय अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त। मय अर्पित मनोबुद्धिर, उसके मन को और बुद्धि को समर्पित किया है श्री कृष्ण के शरण में, चरणों में। ऐसे भक्त जो है मुझे बहुत प्रिय है, इसका मतलब है कि ऐसे भी कोई भक्त हैं जिनके अंदर ये सारे गुण अभी तक आए नहीं है, इसलिए भगवान यह कहते हैं ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। वैसे तो साधारण तौर से सारे भक्त प्रिय हैं, परंतु विशेष करके जिन भक्तों में ऐसे गुण या लक्षण प्रकट हुए हैं, ऐसे भक्तों से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि अभी हम भक्त बन गए, मामला भी हो गया। नहीं, भक्त तो शुरुआत है हमारी, अभी आगे चल के इन गुणों का अनुशीलन करना चाहिए, आगे भक्ति के पथ में बढ़ना चाहिए, फिर धीरे 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 से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक है,
हरे कृष्ण। और एक प्रश्न, किम रजेत का आपने नहीं बताया कुछ?